भाई सही कहती याद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सतुपन में बने रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बाबा ने मुरलियों में क्या बताया याद के बारे में, सिरे की याद क्या है, याद की विधि क्या है। बोला है कोई भी चीज जब साकार में देखी जाती है तो जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धि से सोचने की बात देरी में ग्रहण होती है। यहाँ भी साकार रूप में जिन्होंने साकार को देखा उन्होंने को याद करना कितना सहज। तो सहज याद करना अच्छा है या कठिनाई से याद आए वो ज्यादा अच्छा है। कठिनाई से याद आएगी तो निरंतर याद नहीं होगा और सहज याद आएगी तो याद निरंतर भी हो सकती। शरीर का तो कोई भरोसा नहीं करते तो शरीर छोड़ने का भी जब भरोसा नहीं है तो निरंतर याद ही असली याद है और वो तब होगी जब याद करना बहुत सहज हो जाए। सहज का मतलब ये है कि याद करना मुश्किल न हो लेकिन याद भूलना मुश्किल हो जाए। जैसे किसी का किसी से प्यार हो जाता है प्रैक्टिकल जीवन में तो क्या भूलता है, भूलना भुलाना चाहते हुए भी भूलता है क्या, नहीं भूलता है ना। कभी पूछा जाता है किसी से कैसे याद करें, याद करने की विधि क्या है। जहाँ दिल लग जाता है, जहाँ लगन लग जाती है, जहाँ लगाव लग जाता है प्रैक्टिकल जीवन में वो याद स्वतः ही आता है। इसलिए यहाँ आगे कहानी ने बोला कि जिन्होंने साकार रूप में साकार को देखा उन्हों को याद करना चाहिए। तो आज में साकार था और अंत में भी जो आज में हुआ वो सब अंत में भी होता है। हरेक को डायरेक्ट बात से वर्तल है, इनडायरेक्ट बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। वर्षा लेना है बच्चों को और किससे लेना है, बाप से वर्षा लेना, दीदी दादी दादाओं से वर्षा नहीं लेना, डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना। बीच में अगर कोई बिचौलिया है तो डायरेक्ट बात के वर्ष के अधिकारी नहीं हुए। जो डायरेक्ट बात के वर्ष के अधिकारी है वही रुद्रमाला के मणके हैं। जितना जितना व्यक्तिगत बात को याद करेंगे उतना वर्ष करेंगे। व्यक्तिगत बात माने व्यक्ति में आया हुआ बात, अव्यक्त में आया हुआ नहीं। व्यक्तिगत माना पर्सनल बात को जितना याद करेंगे, पर्सनैलिटी चाहिए बात की। बात भी कोई पर्सन है, पर्सन बनकर के आता है माने व्यक्ति बनकर के आता है हमारे सामने, उसे हमको याद करना है। ऐसे याद करो जैसे कन्या की सगाई होती है। तो कन्या की जब सगाई हो जाती है तो याद बिल्कुल थक जाती है। बच्चा पैदा होता है और याद थक जाती है। तो ये प्रैक्टिकल जीवन की बात बताई। ये एक अलग बात, याद की विधि क्या है। तो कन्या का मिसाल लिया माने संबंध प्रैक्टिकल में चाहिए। कन्या की जब सगाई होती है तो नाम भी बताया जाता है, लगन कब लगती है, जब उसे नाम बता दिया जाता है, धाम बता दिया जाता है, उसका काम बता दिया जाता है, उसका फोटो भी दिखाई दिया जाता है और कहीं कहीं तो एक दूसरे को आपस में मिलाई भी दिया जाता है, तो सगाई पक्की हो जाती है। उसको कहते हैं लगन। जब लगन पक्की हो जाती है तो याद छप जाती है, जैसे कोई छापा मार दिया ना कहीं, ऐसे बुद्धि में याद छप जाती है। छप्पा लगाई हुई चीज भूलती नहीं है, तो ऐसे ही याद करना। नाम भी पता हो ऐसे नहीं, वो सड़क जाती है सब में आता है, नहीं, बिना नाम रूप के कोई चीज होती नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। परमात्मा आर्ट अगर है तो उसका भी एग्जैक्ट नाम भी होना चाहिए, जो संसार में विख्यात हो जाए। उसका रूप भी होना चाहिए, उसका रहने का कोई स्थान भी होना चाहिए, स्थान जिसे ही परमात्मा बात के सोचे, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि सब प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो नाम भी चाहिए, रूप भी चाहिए, धाम भी चाहिए, उसके गुण भी चाहिए, और वो क्या क्या काम करता है इस सृष्टि पर आता है तो कुछ काम करके जाता है, या जैसे सामान्य मनुष्य आते हैं सृष्टि पर, धर्मात्माएं आते हैं या धर्म पिताएं आते हैं, थोड़ी सी मौसिक आकर के चले जाएगा, थोड़ा सा रिफाइनमेंट करके, थोड़ी सी मरम्मत सृष्टि मकान की करके चला जाता है, नहीं, फिर उसे परमात्मा कौन मानेगा। धर्मात्माएं तो दुनिया में बहुत है, महात्माएं बहुत है, धर्म पिताएं बहुत है, लेकिन परमात्मा जिसको कहा जाना है वो तो उन सबसे विशेष होना चाहिए, और विशेष होगा तो जरूर कोई विशेष काम भी करके जाएगा, तो वो विशेष कार्य भी करके जाता है। ऐसा विशेष कार्य करके जाता है जो कोई धर्म पिता, धर्म आत्मा, महात्मा नहीं करके गया। ऐसे नहीं कि परमात्मा आता है और ज्ञान सुना के चला जाता है और विशेष कार्य कुछ भी नहीं, शक्ति का परिवर्तन होता नहीं, नई शक्ति आती नहीं, स्वर्ग दिखाई पड़ता नहीं, और हम कह दें कि परमात्मा आया सृष्टि लाइन में चला गया, तो वो परमात्मा का पार्ट नहीं है। परमात्मा पार्ट प्रैक्टिकल में किसी पर्सन में चाहिए ऐसा, जो ऐसा पार्ट बजा करके जाए, जैसा नाम जैसे जैसे परमात्मा के नाम वैसे वैसे काम करके जाए, तो ऐसी याद छपी हुई होनी चाहिए बुद्धि में। मुख से शोभा का कहना नहीं है, यानी बुद्धि के अंदर याद छपी हुई होनी चाहिए। मुख से बाबा 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 कहना इसका मतलब है कि 63 जन्म का मुख का जो रक्षा लगाते रहे, मुख में राम बगल में छुरी, वो बात न हो जाए। मुख से नाम लेना बहुत सहज होता है, वो एक स्थूल बात हो गई। परमात्मा को अति सूक्ष्म है, आत्मा से भी अति सूक्ष्म पार्ट बजाने वाला परमात्मा है, तो उसको तो बुद्धि रूपी यंत्र से ही कैद किया जा सकता है, बुद्धि से ही उसे याद करना है। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, बुद्धि से याद करना। माँ जब बच्चे को याद करती है तो क्या बच्चा 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 या बच्चे का नाम लेकर के पुकारती है, नहीं, बुद्धि में याद आती है, उसका कर्तव्य याद आता है, उसकी पोतली बोलचाल याद आती है, उसकी भाषा याद आती है, तो ऐसी याद छपी हुई होनी चाहिए। मुख से नहीं कहना चाहिए जो बाबा जो बाबा जो बाबा, जैसे आंसू मासू के एक दूसरे को याद करते हैं, एक बार देख लिया बस, फिर बुद्धि में उन्हीं की याद छप जाती, सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है। बहुत से ऐसे प्रेमी होते हैं जीवन में एक बार ही उनका मिलना या देखना होता है, और जीवन में फिर कभी दोबारा मिलते भी नहीं है, लेकिन जीवन भर उनकी याद छूटती। एक बार की याद, एक बार का देखना, एक बार की अनुभूति सदाकाल के लिए स्थायी बनाई जा सकती है, ऐसी लगन पक्की होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, अंतर नहीं पढ़ना चाहिए, अंतर तो पड़ता है। बाबा को याद करते करते 63 जन्म के जो संस्कार हैं दूसरी दूसरी आत्माओं के संग में आने के, रंग का रंग दूसरी आत्माओं के साथ भी तो लगाया है ना, कि हर जन्म में भिन्नों के साथ ही संसर्ग संपर्क हुआ, ऐसा तो होता नहीं। 63 जन्म हुए या 84 जन्म हुए, ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है जिसका हर जन्म में एक हीरो पार्टदारी के साथ ही संसर्ग संपर्क रहा हो। हाँ, ये हो सकता है किसी का ज्यादा रहा हो और किसी का कम रहा हो। तो जिनका जाति संसर्ग संपर्क तो उसे शेष आत्मा के साथ रहा, उसको जाति याद सकेगी, और जिसका कम संसर्ग संपर्क रहा उसकी बुद्धि में याद निरंतर नहीं दिखेगी। जिन जिन आत्माओं के साथ उसने संबंध जोड़ने की प्रैक्टिस की है, वो आकर के बीच में अंतर पैदा कर देंगी, अपना हिसाब किताब आकर के लेंगी, बुद्धि में इंटरफेरेंस पैदा करेंगी, तो वो अंतर का याद निरंतर नहीं हो पाएगी। लेकिन आप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, जब निरंतर याद करेंगे तब तुम्हारी पाप सत्य होंगे। जैसे सोना है, सोने की खाद निकाली जाती है, सुनार सोने को अग्नि में डालता है, एक बार तेज अग्नि जलाए फिर बंद कर दे, फिर तेज अग्नि जलाए फिर बंद कर दे, मैंने बार बार अग्नि जलाई और बार बार उसको ठंडा कर दे, तो उसमें से खाद निकलेगी नहीं निकलेगी। लगातार की जितनी चाहिए उतनी लगातार उसको तेज अग्नि चाहिए, मध्यम अग्नि भी नहीं चाहिए। तो ये परमात्मा बाप के प्रति लगने की अगन तीव्र चाहिए और साथ साथ निरंतर चाहिए, सुमिरन नहीं करना है, याद करना। याद में और सुमिरन करने में बहुत अंतर है। सुमिरन मुख से किया जाएगा, शुभ बाबा ये अंदर से बोलेंगे, ओठ चलते रहेंगे, वो कोई सुमिरन करना याद करना नहीं है। सुमिरन करने में हाथ और मुख चलता है, जैसे भक्त होते हैं राम का नाम सुमिरन करते हैं तो माला घुमाते जाते हैं और मुख से ओठ चलते जाते हैं, तो वो सुमिरन अलग बात है। लेकिन मन बुद्धि में याद होनी चाहिए, वो याद दिल से आनी चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं कि ऐसे संघों की शिव बाबा के डायरेक्शन हमको मिलते हैं, ऐसे समझो क्यों समझने की क्या बात है, जब शिव बाबा हमको डायरेक्ट मिला हुआ है तो समझने की क्या बात। समझने की बात यह है कि बाबा हमको मिला तो हुआ है, लेकिन हमारी सराउंडिंग्स में जो आत्माएं रहने वाली हैं वो सब एक जैसी निश्चय बुद्धि नहीं है, सबके निश्चय में फर्क है, अंतर वाली है। तो उनके संग के रंग में आने से हमारा निश्चय भी ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए बोला कि हमेशा ऐसे समझो कि जो बाबा की डायरेक्शन मिली, दूसरी आत्माओं के संग के रंग में आने से हमारी बुद्धि में से ये बात निकल जाती है कि हमको ये बाबा शिव बाबा डायरेक्शन दे रहा है। हम साधारण व्यक्ति, और जब साधारण व्यक्ति का डायरेक्शन समझते हैं तो उसमें अलबेला बना जाता है मानने। परमात्मा का डायरेक्शन और उसको मानने में अगर हम फेर करें तो जैसे सड़ा हुआ फल हो गया, ताजा फल खाना और सड़े हुए फल को खाना कितना अंतर पड़ेगा। ताजे फल को खाने से पावर ज्यादा आती है, विटामिन उसमें ज्यादा होते हैं, और सड़े हुए फल को खाने से नुकसान हो सकता है। आधा सड़ा हुआ होगा तो आधा फायदा करेगा आधा नुकसान कर देगा। इसलिए जो डायरेक्शन मिलता है उसे तुरंत फॉलो करना, यह है नित्य बुद्धि की निशानी। अगर सदैव ये समझेंगे कि हमको शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं तो सदैव तुमको शिव बाबा याद रखेगा। ये एक विशेष बात बता रही है, डायरेक्शन फॉलो करने में अगर दे करेंगे तो याद में भी अंतर पड़ता है। अगर डायरेक्शन को तुरंत फॉलो करेंगे और तुरंत फॉलो करने से संस्कार बनाते जाएंगे तो याद निरंतर आती रहेगी। उनके डायरेक्शन कभी उल्लंघन नहीं करने चाहिए। डायरेक्शन को देर में मानना वो तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन उल्लंघन भी कभी नहीं करना। अगर बाप के डायरेक्शन को उल्लंघन किया तो 100 गुना 1000 गुना 1,000,000 गुना बोझ रहता है। जैसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति हमको डायरेक्शन दे और हमको उसको उल्लंघन कर दें तो उतनी सजा के भागीदार नहीं बनते। और कोई बड़े ऑफिसर की पकड़ में आ गए और उसके सामने हमने नाफरमानी कर दी तो वो तो पकड़ लेगा, डिसमिस कर देगा, घाटा बहुत भारी पड़ जाएगा। तो सेवा तो राजाओं का राजा बनाने वाला है, राजाओं का राजा महाराजा बनाने वाला है, उसके सामने तो कितना केयरफुल रहना चाहिए। उन छोटे मोटे राजाओं के सामने लोग जाने में थर थर कांपते हैं और ये तो बड़े बड़े राजाओं को महाराजा बनाने वाला है, उसके डायरेक्शन को तो फौरन फॉलो करने चाहिए। तो अवस्था भी बहुत ऊंची रहेगी यार। अवस्था अप एंड डाउन कब होती है? जबकि हम पाप के डायरेक्शन को डायरेक्टर का डायरेक्शन है, जैसे रूपी रंगमंच का जो ड्रामा है उसका एक बड़े से बड़ा डायरेक्टर है, उसके डायरेक्शन को हम फॉलो करने वाले ऊंचे से ऊंचे एक्टर थे, ये बात अपनी भूल जाते हैं। अच्छा, परमात्मा जी को तुम याद करते हो वो क्या चीज है? कोई चीज है या ना चीज है? अगर समझोगे कि वो भी कोई चीज है, कोई चीज है कि ना चीज है? कोई चीज है। तुम कहते हो वो अखंड ज्योति स्वरूप, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि परमात्मा तो अखंड ज्योति स्वरूप है। अखंड ज्योति स्वरूप का मतलब क्या हुआ? बाकी तो कहते हैं मैं कोई अखंड ज्योति स्वरूप नहीं हूँ, कोई शुद्ध ज्योति नहीं है जो अखंड रूप से जलती रहती है। अखंड ज्योति को याद करना ये रंग हो जाता है। क्या कास्केट को जलगा दिया, सामने दीवार से लटका दिया, उसमें बल्ब लगा दिया, रात भर बल्ब जल रहा है और हम जब उसे देखते हैं तो उसको याद करते हैं। वो अखंड ज्योति किसी किसी के कमरे में 24 घंटे जलती रहती है, उसको याद करते हैं, देखते करते। तो ये राइट है क्या? पाप कहते हैं उस अखंड ज्योति को याद करना रंग हो जाता है। क्यों क्यों रंग हो जाता है? क्योंकि वो कोई स्थूल ज्योति नहीं है। ज्योति का मतलब है ज्ञान की ज्योति, स्थूल ज्योति या ज्ञान की ज्योति, वो ज्ञान का सागर है ना, तो वो अखंड ज्ञान की ज्योति उसमें जलती रहती है। माने उसका ज्ञान जो है कभी छूटता नहीं है, ऐसी अखंड ज्योति है ज्ञान की। बाकी स्थूल को ज्योति को याद करना ये बाबा ने नहीं सिखाया। याद तो एक्यूरेसी चाहिए, सिर्फ गतोड़े मारने से काम नहीं चलेगा, एक्यूरेट बात को जानना चाहिए। बात कोई जड़ ज्योति का तत्व तो नहीं है जिस जड़ ज्योति को तुम याद करते हो। पाप कैसी ज्योति है? ज्ञान की ज्योति। पाप की जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें ज्ञान की ज्योति सदैव जड़ती रहती है। ऐसे उस ज्ञान सागर बाप को हमें याद करना है। तुम जानते हो कि वो ब्रह्मा के तन में है। किसके तन में? ब्रह्मा के तन में। क्यों? ब्रह्मा ने तो गली तोड़ दिया। ब्रह्मा के तन में कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा के तन। प्रजापिता ब्रह्मा माना जो सारी प्रजा का पिता है, आत्मा पति का है, उस प्रजाति का ब्रह्मा की कन्हने बाप बैठा हुआ है, तो जरूर उसको यहाँ याद करना पड़ेगा। कहाँ याद करना पड़ेगा? यहाँ प्रजाति का, वहाँ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं परम धाम में याद करना है, बाप नीचे बैठा हुआ है और हमें याद करे ऊपर को, तो राइट हुआ है रंग, ये तो रंग हो गया। बाप तो नीचे शक्ति को, नई शक्ति को बनाने के लिए आया हुआ है ना, पुरानी शक्ति का विनाश करने के लिए आया हुआ है ना, और हम उसको ऊपर याद करें। इसलिए एक मुरली में बोला हुआ है, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है सूर्य संप्रदाय। फिर मुरली बोला, मुझे मेरे परम धाम में याद करो, तो दो बातें हो गई, परम धाम में याद करें या नीचे याद करें। परम धाम का मतलब ही है बड़े से बड़ा धाम, परे से परे धाम, धाम माने घर। परमात्मा भी साकार कर्म में आता है, पर्सनैलिटी लेकर के आता है, तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को रहने के लिए भी कोई स्थान चाहिए, कोई अपना विशेष स्थान, जिसको कहा जाता है मधुबन। इसलिए कहते हैं मधुबन में मुरलिया बाजे, जहाँ जहाँ मिली मधुबन बना देंगे, वहाँ वहाँ बाप आवेंगे, मुरली चला देंगे। बाप मधुबन में ही आवेंगे, दूसरी जगह नहीं आवेंगे, ऐसे अंजाम किया ना। तो मधुबन हुआ बाप का घर, वो परे से परे घर है, माने सबकी बुद्धि में वो घर नहीं बैठेगा, ये बड़े से बड़ा घर है। तुम विशेष बच्चे हो, बाप के बड़े बच्चे, बड़े बच्चे, इंद्रवट कहते हैं ना, बड़ा भाई, तो उन बड़े बच्चों की बुद्धि में बैठता है वो घर। औरों की बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं कि ये बड़े से बड़ा घर है। तो परम धाम का रहने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परम धाम कोई ऊपर ही है। मुरली बोला, तुम बच्चे परम धाम को इसी शक्ति पर उतार लेंगे, तो इस शक्ति पर परम धाम कैसे उतरेगा? बाप का वो स्थान मधुबन एक ऐसा वाइब्रेशन वाला स्थान बन जाएगा, ऐसा वायुमंडल वाला बन जाएगा, जिसमें सारा बच्चे आत्मिक रूप में स्थिर होने वाले होंगे, देवान को भूले हुए होंगे, अपनी आत्मा अंधे निकल उनको याद रहेगी, स्मृति में रहेगी। तो परमधाम में आत्मा किस रूप में रहती है? अंधे रूप में, बिंदु रूप में, ऐसी निसंकल की स्टेज जहाँ संगठित रूप में बच्चों की बनी हुई हो, वही परमधाम होगी, वही बात का घर होगी। तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा के तन में बाप आया हुआ है, तो जरूर उसको याद यहाँ करना पड़ेगा, ऊपर में नहीं बैठा है, यहाँ आया हुआ है, पुरुषोत्तम संगम युग पर आया हुआ है। ये पुरुषोत्तम संगम युग, युग कहाँ होते हैं? साकार शक्ति पर नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं? नीचे। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर आया हुआ है, बाप कहते हैं मैं तुमको इतना ऊंच बनाने के लिए यहाँ आया हुआ, तो तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे ना। आप कहते हैं मैं तन में बैठा हुआ हूँ, तो उस तन में मुझे याद करो। बल बिंदी बुद्धि में याद नहीं आती है, बार बार भूल जाती है क्या? हमारी याद तो प्रवृत्ति की होनी चाहिए, तन भी याद आ गए और तन में बिंदी आत्मा भी याद आ गए। तो शरीर में से बिंदी आत्मा निकल जाती है तो शरीर को क्या कहते हैं? मुर्दा। तो मुर्दे को भी याद नहीं करना, तन में बिंदु आत्मा को याद करना। बस बिंदु बुद्धि में से खिसक जाती है, नहीं याद आते। अच्छा फिर में उसको तो याद करो, क्या बात? बिंदु बुद्धि में से खिसक जाती है, बिंदु तो छोटा रूप है, सूक्ष्म रूप है, तो बड़े रूप को, लिंग रूप को तो याद करो। लिंग रूप का मतलब क्या? लिंग माना तन, वो तन जो कि निराकारी स्टेज में टिकने वाला है, उस तन को याद करो जिसको निराकारी स्टेज का वरदान मिला हुआ है। ऐसी निराकारी स्टेज वाले उस तन को भी याद करेंगे तो तुम्हारी अवस्था कैसी बनेगी? मेरा रंग बनेगी ना, तो बड़े रूप को याद करेंगे उसमें भी फायदा है, ऐसे नहीं नुकसान। हाँ बिंदु को साथ साथ याद करेंगे तो ज्यादा फायदा है, सोने में सुहागा है, अति उत्तम है। लेकिन मान लो अगर कभी अवस्था बहुत खराब हो रही है, देवान ज्यादा ही खींच रहा है, तो उस साकार रूप को भी याद करेंगे जो निराकार इस खेत में टिकने वाला है, तो भी फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बड़े रूप शिवलिंग को याद करेंगे तो भी पाप कटेंगे, बड़े रूप पर ये हेरे हेरे हुए हो, बड़े रूप को याद करने के लिए प्रैक्टिस पक्की पड़ी हुई है। अच्छा बड़ा ही सही, मतलब शिवमा को याद करो, क्या मतलब क्या है? शिव बाबा को याद करो, ये नहीं कहा कि शिव बाप को याद करो, शिव बाप माने बिंदु बिंदु आत्मा का बाप बिंदु, ऐसे मुरली में कभी नहीं बोला शिव बाप को याद करो, नहीं शिव बाबा को याद करो। बाबा जब कहेंगे तो जरूर ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर है तो जरूर तन के अंदर होना चाहिए। बिंदु रूप में जो हम आत्माओं का बात है, हम आपस में बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई दूसरा को समझ नहीं पड़ता। जब शरीर में प्रवेश होता है तो ढेर से ढेर संबंध बन जाते हैं, उनमें ग्रैंड फादर का भी संबंध बनता है, तो ग्रैंड फादर को बड़े रूप में भी याद कर सकते, भक्ति मारी मेरी शिव को याद करती है ना, बड़े को भी याद किया तो भी तुम्हारे सभी पाप कट जाएगा। क्या बोला मुरली, छोटे रूप तुमको याद नहीं आता है तो प्यार से अगर बड़े रूप को भी याद करेंगे तो भी तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, लेकिन शर्त क्या है? निरंतर याद करो। क्या याद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, बीच में कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए, दूसरे का याद आना माना व्यभिचारी याद, और व्यभिचारी याद करेंगे तो बाटा होगा, पाप बच्चों नहीं होंगे, अग्नि तेज नहीं होगी, मध्यम अग्नि हो जाएगी। पूछते हैं हम कैसे याद करें?
शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें, बहुतों का ये प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को करना है, परंतु शरीर भी याद जरूर आवेगा। क्या आत्मा को सुप्रीम सोल आत्मा को याद करना है, लेकिन वो जितने प्रवेश करता है वो भी जरूर याद आवेगा। क्यों जरूर क्यों नहीं याद करते उसको, क्यों याद आवेगा? जरूर इसलिए याद आवेगा कि बिना उस शरीर में प्रवेश करे परमात्मा शक्ति का कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता। और सदगुरु के रूप से कर्म को कराने वाला है, खुद करे या न करे भक्तों से जरूर कराना है, तो कराने वाला भी चाहिए प्रैक्टिकल में, ऐसे नहीं बिंदु कराता है, नहीं प्रैक्टिकल में कोई है जो हमसे कराता है। तो बार बार कहते हैं पहले याद आत्मा को करना है, जरूर सही याद आता है, पहले शरीर फिर आत्मा याद करेंगे तो पहले क्या याद आएगा? पहले शरीर याद आएगा। क्यों क्यों याद आएगा? शरीर पता कैसे चलेगा कि हमने सुप्रीम को ज्योति बिंदु को ही याद किया, दूसरी कोई आत्मा को याद नहीं किया? आत्मा है आत्मा तो सब बिंदु बिंदु, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पांच करोड़ मनुष्य आत्मा है सब बिंदु। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिंदु जो है वो सुप्रीम सोल है, दूसरा बिंदु नहीं है? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, पता तो तभी चलेगा जब वो मुकर्र रथ में प्रवेश करके उस कार्य को प्रैक्टिकल में संपन्न करने वाला बने, जो कार्य दुनिया में कोई न कर सके, ऐसा पक्का पुरुष उस तन के द्वारा मिलना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि ये सुप्रीम सोल है। जैसे मुरली में बोला, पता कैसे पड़ता है? केंद्र में बाप भगवान है। जब आश्रम के ज्ञान सुनाते तो पता पड़ जाता है कि ऐसा ज्ञान तो सिवाय परम पिता परमात्मा की और कोई सुना ही नहीं सकता। तो वो कर्म की विशेषता है जो आत्माओं के पार्श से परमात्मा पार्श को भिन्न स्थापित कर देती। तो पहले शरीर याद आएगा फिर आत्मा याद आएगा। नारायण के शरीर में बैठना तो शरीर भी जरूर याद पड़ेगा। जो ऊपर में बात को याद करते होंगे वो उनका है भक्ति मार्ग। क्या बस वो तथा करते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी या कौन से मार्ग के हो गए भक्ति मार्ग। क्योंकि उन्हों को परमात्मा बाप के आत्मपेषण का पता ही नहीं, इसलिए वो तो ऊपर में याद करते। आत्मपेषण कहाँ किया जाएगा, ऊपर या नीचे? आत्मपेषण माने धंधा। परमात्मा बाप जो धंधा करेगा वो ऊपर करेगा या नीचे करेगा? पतितों को पावन बनाने का बाप का धंधा है वो धंधा ऊपर बैठ के करेगा या नीचे बैठ के करेगा? पतित कहाँ है, ऊपर में। पतित तो नीचे बैठे हुए हैं तो धंधा कहाँ करेगा, नीचे बैठ के करेगा ना। तो जो ऊपर याद करते हैं वो है भक्ति मार्ग। न उनके नाम का उनको पता है, न रूप का पता है, न देश का पता है, न काल का पता है, इसलिए वो है भक्ति मार्ग वाले। ऐसे ही अंधश्रद्धा पूर्वक याद करते रहते हैं। कौन? तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारी माने ब्राह्मण। तुम तो सत्य ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो कहेंगे ऊपर तुच्छ मतन में बैठा। तो तुम्हारा बाप ब्रह्मा ऊपर बैठा है और तुम नीचे आ गए, तुम कहां से नीचे आ गए? संगम युग है तो संगम युग में ब्रह्मा बाप भी तो चाहिए ना। तो उन ब्राह्मणों को पता नहीं है, वो ऊपर में याद करेंगे और तुम कहां याद करोगे? तुम नीचे याद करोगे। मैं यहाँ इस शरीर में आकर के कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है जहां अब तुमको जाना है। क्या किसके तन से ये वाक्य बोला? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में बैठ करके सुप्रीम सोल बाप ने ये वाक्य बोला। क्या बोला फिर से सुन। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ, किस शरीर में आकर कहता हूँ? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है। कहाँ याद करना है? तुमको याद वहां करना है जहाँ आप जाना है। कहाँ जाना है, है? कहाँ जाना है? मैं इस ब्रह्मा के तन में बैठ कर कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है जहाँ अब तुमको जाना है। कहाँ जाना है जोर से बोलो। एडवांस पार्टी में ना, तो एडवांस पार्टी का पहली कार्य चल रहा होगा ना, तो वहां याद करना माने तुच्छ मतन। तुच्छ मतन कोई ऊपर नहीं है, जरूर है। वो ब्राह्मण है जिन्होंने अपनी बुद्धि की तुच्छ स्टेज बनाई, मन चिंतन मंथन की स्टेज बनाई हुई है सूक्ष्म स्टेज। ऐसे ब्राह्मणों का जत्था जखीरा जहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा है, संगठन इकट्ठा पड़ा हुआ इकट्ठा हुआ पड़ा है, वहां मुझे याद है। मन मधुबन वहां तुमको जाना है, यानी 68 से पहले की वाणी है। पहले ही इशारा दे दिया कि परमात्मा पार्ट कहीं दूसरी जगह चलेगा। तुमको भी जाना है, तुम्हारी मन बुद्धि को भी वहां ट्रांसफर होना है। ऐसे नहीं तुमको यहां याद करना है, कहां? ब्रह्मा के तन में। इसलिए ब्रह्मा का फोटो रखने के लिए मना कर दिया। तुम बच्चों को ब्रह्मा का फोटो समय को आने से याद रह सकती है, बाहर जाने से याद भूल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। गिलास में बत्तियां हैं, चंद्रमुख में तो नहीं है। तो जहां भी हो बाबा को याद करना, बहुत प्यार से याद करो। जैसे सजनी साधन को बहुत प्यार से याद करती है, चिट्ठी नहीं आती है तो बहुत हैरान हो जाती है। चिट्ठी तो तब आएगी जब प्रैक्टिकल में होगा, प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं तो चिट्ठी कहां से आएगी। तुम सजनियों को बहुत धक्के खा खा करके ये साधन में कितने जन्म धक्के खाए, 63 जन्म तुम बच्चों ने धक्के खाए, तभी ये सलोना साधन तुमको मिला। तो अब कितने प्यार से याद करना चाहिए। बच्ची बनेगी तो 2-3 दिन फिर बीतेंगे। ऐसे लोग समझते हैं कि बाबा बच्ची का प्रोग्राम रख दो, या मधुबन से बच्ची करने का प्रोग्राम आया है, बच्ची का प्रोग्राम करो। सोचते हैं कि 2-3 दिन अच्छी बच्ची चलेगी, अच्छी अवस्था बन जाएगी। अब इसमें तो संगठन का सहयोग मिल जाता है, क्या बच्ची में बैठ करके याद करेंगे तो संगठन का सहयोग मिल जाएगा। ये आधार भी बच्चों को नहीं रखना चाहिए, क्यों? संगठन का आधार भी आधार हो गया क्या? हाँ, ये भी आधार हो गया। इब्राहिम बुद्ध कार्य से गुरु नानक ने आकर के क्या किया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए दिए, उनमें सब इकट्ठे होकर के संगठन की याद में, परमात्मा की याद में बैठने लगे। तो संगठन का आधार हुआ ना, संगठन का आधार लेने वाले निराधार सितारे हुए क्या? हुए। तो संगठन मिल जाए ऑटोमेटिक, कोई बाहर जाने, संगठन का नाम ले लेना चाहिए, लेकिन आस्था नहीं रखनी चाहिए कि संगठन हो तब हमारी याद अच्छी बने, नहीं, संगठन का आधार भी नहीं रखना। कभी सहयोग मिल सकता है संगठन का और कभी नहीं भी मिल सकता। अभी तो शांति की अवस्था चल रही है दुनिया में, लेकिन विनाश होगा, चारों तरफ भागदौड़ होगी, पड़ी होगी, तो उसमें संगठन का आधार मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो फिर बाप को याद नहीं करेंगे क्या, अवस्था को अच्छा नहीं बनाएंगे क्या? अगर उस समय ये आधार सबका हुआ पड़ा होगा कि आधार मिलेगा संगठन का तो हमारी अवस्था बढ़िया बन जाएगी, माउंट आबू में जाकर के बैठ जाएंगे या मधुबनी में जाकर के बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं। स्पष्ट बोला, क्या बोला, संगठन का आधार की आकांक्षा नहीं रखनी, अपना निराधार का होना चाहिए, कोई आधार नहीं। आसमान में कौन से सितारे चमकते हैं, वो किसी का आधार नहीं करके चमकते हैं क्या? निराधार सितारे चमकते हैं, किसी का आधार नहीं। तो ऐसे ही जो चमकने वाले सितारे हैं सत्य रूपी रंगमंच पर, जो धरती के चैतन्य सितारे हैं, जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, संसार की नजरों में समाये जाने वाले हैं, वो परमात्मा बाप के चैतन्य सितारे किसी भी आधार पर चलने वाले नहीं होंगे। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना ये भी एक कमजोरी है कि प्रोग्राम बनेगा तो हमारी अवस्था उसी उठेगी, और प्रोग्राम नहीं बनेगा, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, हम लोगों की अवस्था कैसे बढ़ेगी? तो ये भी कोई अच्छे पुरुषार्थी के लक्षण नहीं। बात कहते हैं पहले शरीर को याद करके फिर आत्मा को याद करना। आत्मा आधार किसका लेती है, शरीर का आधार लेती है। दूसरे को अगर करेंट देनी है तो फिर रात को सवेरे को याद में रहना, यानी सवेरे रात में बैठ करके भी किसी को करेंट दे सकते हैं। आत्मा को देखना मन आत्मा को सच लाई थी, लेकिन कौन सी आत्मा को हमने सच लाई थी कैसे पता चलेगा? आत्मा तो सभी बिंदु है, तो हमने कौन सी आत्मा को सच लाई थी ये पता तो तब ही चलेगा जब हम उसके साकार शरीर को याद करेंगे। किसी आत्मा को करंट देनी है तो क्या करेंगे? सिर्फ बिंदु आत्मा को ही समझाएंगे या बिंदु आत्मा को करंट चाहिए उसके काम चल जाएगा? नहीं, उसके शरीर को भी याद करना है। तो ऐसे परमात्मा की भी याद, परमात्मा बात को भी जब हम प्रैक्टिकल में याद करें तो उसके प्रैक्टिकल पार्ट को भी याद करें। मैं जो हूँ, कैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाय रहा हूँ उस रूप में मेरे को याद करें। अगर पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तो पूरा योग भी नहीं। क्या ज्ञान अधूरा है? ज्ञान माने जानकारी। अगर बाप की पहचान ज्ञान जानकारी में कमी है तो पूरा योग नहीं लगेगा। तो पहले पहले क्या करना चाहिए? पहले बाप की पूरी जानकारी बुद्धि में बैठाना चाहिए, नहीं तो पूछते रहेंगे बाप को कैसे याद कर, हमारा योग नहीं लगता। शरीर से परे होने का अभ्यास होने के कारण यदि दो चार मिनट भी अशरीरी बनेंगे तो मानो जैसे कि चार घंटे का तुम बच्चों को आराम मिल जाएगा। ऐसा समय आएगा कि नींद के बजाय चार पांच मिनट मिनट अशरीरी बन जाएंगे और ऐसे अनुभव करेंगे कि शरीर को खुराक मिल गई। वैसे ये भी खुराक मिल जाएगी, शरीर को पुराने नहीं रहेंगे, हिसाब किताब तो पुराना होगा, सिर्फ उसमें ये एडिशन करते जाओ। अभी बात तुम बच्चों को आकर के ये यथार्थ बातें बतलाते हैं, बिंदु तुमको छोटी लगती है, अच्छा बिंदी का घर तो बड़ा है, बिंदी का घर कौन सा है? शरीर न, बिंदी का घर तो बड़ा है, अच्छा तो घर को याद करो। बुल्लू बोलते हैं ना, बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग के बच्चे को याद करो, कहते हैं ना। तो तीन तीन बातें बताई देते हैं, कहते हैं अपने घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, बाप बच्चे को याद करो। तो तीन तीन चीजों को याद करें या एक को याद करें? क्या करें? एक को याद करें ना, फिर तीन तीन बात तीसरे बता दी। वो तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक में ही तीन है, तीन में ही एक है। जब कहते हैं बाप को याद करो तो जरूर सुप्रीम सोल की तरफ इशारा है, प्रजाति का बाप की तरफ इशारा है, वो भी बाप है बेहद का, जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके बाप बनता है प्रैक्टिकली। फिर घर को याद करो, तो आत्मा का घर कौन सा हुआ? शरीर हुआ ना, तो जिस शरीर में परमात्मा बाप प्रवेश करता है वो घर हुआ, उस घर को याद करो, वो भी एक ही बात होगी। फिर वर्षों को याद करो, तो लक्ष्मी नारायण क्या है? हमारा वर्षा है ना, नारायण को याद किया, माना सारी शक्ति रूपी वृक्ष के बीज को याद कर लिया, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ, बीज को याद किया, माना सारे वृक्ष को याद का पानी दे दिया, सारी मनुष्य शक्ति का बीज, उस बीज को याद करते रहो तो उस बीज में सारी पावर स्वतः शरीर में सारे वृक्ष को याद की पावर मिल जाएगी। तो तीनों ही एक ही बात होगी, बाप को याद करो वो भी एक ही बात, वर्षों को याद करो वो भी नारायण, नारायण हमारा वर्षा है, जो सारे विश्व का मालिक है, विश्व का पिता है, विश्व का पति है, वो अगर हमारी मुट्ठी में आ जाए तो तो जैसे तारा बच्चे से जुड़ो सारे तारा विश्व हमारी मुक्ति में आ गया। तो बुद्ध रूपी हथेली में उस बच्चे को याद करो, चाहे बाप को याद करो, चाहे घर को याद करो, बात एक ही हो जाती है। तो अभी तुम बच्चों की याद आज सहित है, दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं। तुम जानते हो क्यों बाबा बिंदी है? अच्छा, तुमको बिंदी छोटी लगती है तो उसका घर तो बड़ा है, तो घर को याद करो। बाबा भी वहां रहते, कहां रहते हैं? घर में रहते हैं ना। बाप भी घर में रहते हैं और तुम बच्चे भी कहां रहते हो? घर में रहते हो। सारी दुनिया की पैदाइश कहां से होती है? अरे किसी की पैदाइश होती है तो कहां से होती है? किसके पेट से होती है? माँ के पेट से होती है ना। जो ब्राह्मणों की पैदाइश कहां से होती है? ब्रह्मा से होती है ना। तो ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट वो हमारा घर हो गया है ना। ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में ही तो बाप का प्रवेश होता है, तो वो बाप का घर हो गया। जो बाप का घर वो हम बच्चों का भी, हम बच्चों का भी घर होगी। बीच बीच में एक दो मिनट भी तुम निकाल करके इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते हुए ट्रैफिक को रोक करके दो तीन मिनट साइलेंस में चले जाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, सारे कार्य को साफ कर देते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो, कोई से बात करते हो या कोई भाषण करते हो, तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर देना चाहिए। या अगर याद की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये कंप्लेंट रहती है कि हमको बिंदु याद नहीं आता, तो क्या करें? बीच बीच में सारा काम एकदम बंद करके और दो पांच मिनट उसे याद में टिक जाए। मेरा कार्य इससे ही एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर के द्वारा चलते हुए कार्य को बीच बीच में रोक करके भी ये प्रैक्टिस पक्की कर देनी चाहिए, तो याद की अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। जो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं वो कभी भी सदस्य मार्ग वालों को राजी होने सिखा सकते। निवृत्ति मार्ग वाले कौन? जो सिर्फ बिंदु को याद करते हैं वो हुए निवृत्ति मार्ग वाले। या जो सिर्फ कहते हैं कि बाबा ब्रह्मा को याद करो, साकार को याद करो, तो वो भी हो गए निवृत्ति मार्ग वाले। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर की भी प्रवृत्ति है, हमारी याद भी प्रवृत्ति की है। प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया में हमको जाना है तो याद भी हमारी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। साकार भी याद आए और साकार के साथ साथ निराकार बिंदु भी याद आए। जो निराकार बिंदु को सिर्फ याद करने वाले हैं वो राजयोगी नहीं हो सकते, न राजयोग सिखा सकते। जो सिर्फ साकार को याद करने वाले हैं वो भी राजयोगी नहीं हो सकते, वो भी हठयोगी है। जो हठयोग सिखाएंगे राजयोग नहीं सिखाएंगे। तो जो हठयोगी होते हैं वो कभी सरल नहीं होते, टेढ़ी चाल वाले होते हैं। जितना जो स्वयं सरल होगा उतना उनकी याद भी सरल होगी। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। सरलता होती है कम तो याद भी कम, जटिल होगी बुद्धि तो याद भी जटिल हो जाएगी। हठयोगी होंगे तो याद भी हठपूर्वक बैठने से याद आवेगी, वो भी ऐसी निरंतर याद नहीं हो सकती। तो शरण से तू कौन ले सकेगा? जितना हर बात में स्पष्ट होगा, हर बात में साक्षी होगा, उतना सरल होगा। कैसे भी है सच्चे दिल पर साहब राजी, तो बाबा साहब किसको याद आवेगा? जो साफ दिल वाले सच्चे होंगे उनको बाबा खूब याद आ, जिन्होंने अपने बुद्ध रूपी शीशे को चित्त को निर्मल नहीं बनाया, बाबा को पूरा कोसा मिल नहीं दिया, सच्चाई सफाई से जो चलने वाले नहीं है, दुराव छुपाव से चलते हैं, उनका चित्त कभी निर्मल नहीं हो सकता। उस चित्त में कभी बाप की याद छप नहीं सकती। तो सरलता बहुत पहला गुण है याद करने वालों की। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाए। विचित्र मन बिंदु और चित्र मन साकार, तो बिंदु के साथ साकार की भी याद रहे तो चरित्रवान बन। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। सिर्फ चित्र को याद किया या चित्र के साथ जो चरित्र है वो तो याद आएगा ही, सिर्फ उसी को याद किया तो चरित्र की याद रहेगी, विचित्र भूल जाएगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आना चाहिए तो क्षिप्र गति भी होगी, तेजी से भी कर्म भस्म होंगे, निरंतर याद भी रहेगी और सहज याद भी होगी। याद में रहते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद के साथ साथ सहज योगी भी हो और निरंतर योगी भी। अगर ये नहीं होता है तो समझो याद अधूरी, तो सहज कब होगी? सिर्फ बिंदु को याद करेंगे तो सहज याद होगी? होगी नहीं, वो तो हठ योगियों की याद हो गई। हठ योगियों को हठ पूर्वक याद आती है, हाथ पांव बांध करके बैठ जाएंगे तो याद आएगी, नहीं तो याद नहीं आएगी। कर्म करके याद नहीं आ सकती, निरंतर याद नहीं हो सकती। आर्थिक मासूम का भी एक दो के करीब से प्यार होता है, आर्थिक मासूम को दोनों देहधारी होते हैं। आसुक के सामने जैसे मासूम को खड़ा हुआ रहता है, मासूम को फिर आर्थिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आसुक हो परमपिता परमात्मा का, एक है मासूम और बाकी सब आत्माएं हैं आसुक। अभी वो निराकार बाप मासूम को तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते, तो उनको याद करना चाहिए। क्या निशान दिया? आर्थिक मासूम को याद निशान दिया। वो आर्थिक मासूम को एक दूसरे को याद करते, तुम क्या करो? तुम आर्थिक हो, बाप मासूम है, बाप कभी आर्थिक नहीं होता, ये आंसर। बाप आर्थिक नहीं है, बाप सिर्फ मासूम है और तुम बच्चे आशिक हो, तो आशिक जो बच्चे हैं वो मासूम की बात को कैसे याद करें? अभी निराकार बाप उस मासूम के द्वारा तुमको बैठ मत देते हैं, बुद्धि देते हैं कि मुझे बैठ करके याद करो। शिव की याद में आकर के बैठो, लेकिन और कोई याद ना दे, यहाँ तुमको मदद मिलेगी सवेरे। बाप की याद में सवेरे सवेरे बैठेंगे तो बाप से विशेष मदद मिलेगी। सारा दिन बाप को भी सर्विस करनी होती है बच्चों में प्रवेश करके, दूसरों की आत्माओं की सर्विस करने की, लेकिन सवेरे का टाइम बाप के लिए फ्री है। तो क्या करो कि अमृत बेले बाप से वरदानों की झोली भरते रहो। अमृत बेला अगर सुहाला बनाया तो सारा दिन सुहेला जाए, ये है बड़ी से बड़ी पुरुषार्थ करने की पॉइंट, सामर्थ्य देने को सुधारना। तो बाबा टाइम देते हैं, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर सवेरे 2-3 बजे उठ करके याद करो। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से तुम बच्चों को डरना नहीं चाहिए कि आंख खोल करके बैठेंगे कोई सुंदर दिखाई पड़ जाएगा तो हमारी बुद्धि उधर चली जाएगी, नहीं। इससे पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि हमारी आंखें कितनी कंट्रोल में हुई है। आंखें खुली हुई होते हुए भी मन बुद्धि को ऐसा कंट्रोल करना है कि मन बुद्धि ऐसी कंट्रोल हो जाए जो आंख के सामने से कोई गुजर जाए और मालूम भी न पड़े। कितनी याद पक्की है, जैसे महबूब महबूबा को याद करता है। गहरी याद में जब समाया हुआ होता है तो सामने से कोई निकल जाता है, आंखें खुली हुई होती हैं और उसको पता ही नहीं चलता है कौन निकल गया। पूछा जाता है कौन यहाँ से गुजर के गए, तो कहीं हमें नहीं मालूम। ऐसी याद पक्की होनी चाहिए, आंखें बंद करने की बात नहीं, आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए।